नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो लाइव सूत्रास के मंच पर। आज से हम ज्योतिष इन हिंदी पॉडकास्ट पर एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो हर वेडनेसडे को ब्रॉडकास्ट की जाएगी। इसमें हमारे स्टूडेंट्स कोर्स में सीखी हुई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारे लिसनर्स को नई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिस्कशन नक्षत्र, दशा, लग्न कुंडली और वर्ग कुंडलियां जैसे टॉपिक्स पर होगी। हमारी इंटरव्यूअर ज्योति हैं, जो कि मुंबई में रहती हैं और फाइनेंस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। इनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है और वह एक अच्छी स्टूडेंट है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.astrolifesutras.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाले कोर्सेज की भी जानकारी दी गई है। हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो लाइफ सूत्रास के नाम से भी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी ज्योतिष से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।
लगन का मालिक कुंडली से भाग्य दत्त देते हैं। ज्योतिष एस्ट्रो लाइफ
सूत्रास। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति। ज्योतिष इन हिंदी पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। एस्ट्रो लाइफ सूत्रा की सीरीज एस्ट्रो डिस्कशन विद फ्रेंड्स में आज मेरे साथ है राखी। राखी हमारी क्लास की ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक है और वह एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन बना के अच्छी ग्रोथ देख रही है। आइए बात करते हैं राखी से। राखी, अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, आप एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़ी, आप नितिन सर और एस्ट्रो लाइफ सूत्रा से आपने क्या सीखा?
नमस्कार, मैं राखी बुबना हूँ। मैं वापी गुजरात से हूँ। ज्योतिष सीखने की जिज्ञासा ने मुझे नितिन सर से जोड़ा। पहले मुझे ऐसे लगता था कि जो ज्योतिष है वो पंडित लोग की, ब्राह्मणों की, महाज्ञानी लोग की बस की बात है, वो अपने लोग की बस की बात नहीं है। पर जब मैंने नितिन सर के वीडियोस देखे यूट्यूब में, उन्होंने एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोई भी लेमैन भी उसको समझ सकता है। तो इसी तरह से मैंने फिर नितिन सर से जुड़ी मैं और उनसे बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया और नक्षत्र कोर्स अभी कर रही हूँ और आगे भी ऐसा ही चलता रहे लग रहा है।
जी राखी, बिल्कुल सही कहा आपने। राखी, जब हम बात करते हैं दशा, आज का हमारा डिस्कशन में आपको बहुत बता दूं बहुत खास होने वाला है। तो एक लेमैन की लैंग्वेज में दशा का मतलब होता है डायरेक्शन या कंडीशन। तो एस्ट्रोलॉजी में भी इसका यही मतलब है कि नेटिव की डायरेक्शन क्या है, मींस वो लाइफ में कहाँ हेड कर रहा है या उसकी कंडीशन क्या है, उसके हालात कैसे हैं। एस्ट्रोलॉजी में दशा का मेन ऑब्जेक्टिव होता है चार्ट के डायनेमिक एनालिसिस करना, मींस इवेंट को पिन पॉइंट करना कि चाइल्ड बर्थ, मैरिज, करियर कैसा चल रहा होगा या नेटिव की कंडीशन कैसी होगी उस टाइम पर, उसका माइंड सेट कैसा होगा। तो आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये है कि दशा का बेसिक एनालिसिस, वेरी बेसिक एनालिसिस आपने एडवांस कोर्स में क्या सीखा, आप कुछ प्रिंसिपल्स शेयर कर सकती हैं हमारे साथ?
हाँ हाँ जी बिल्कुल। दशा हमें है ना उस उंगली का उस समय की सिचुएशन बताती है और साथ में दशा के हेल्प से अपने लोग टाइमिंग ऑफ इवेंट भी निकाल सकते हैं। कोई भी दशा नाथ है जो जिसकी दशा चल रही है, अगर कोई भाव भाविस कारक से संबंध बनाता है तो उस भाव को वो एक्टिवेट करता है और जब वो उस भाव को एक्टिवेट करता है तो उस भाव के अपने पास में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या निगेटिव रिजल्ट आएंगे, वो दशा बताती है। जैसे कि अगर फोर्थ लॉर्ड एक्टिवेट हुआ है, फोर्थ हाउस एक्टिवेट हुआ है, तो हो सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी का रिलेटेड कोई इवेंट हो। अब उस दशा में प्रॉपर्टी आएगी कि जाएगी वो अपने लोग निर्धारित करते हैं कि वो कुंडली का कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है जिसकी दशा चल रही है। इसलिए सबसे पहले बेसिक में सबसे पहले यही देखते हैं कि जिसकी दशा चल रही है वो कुंडली का कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है। उसके बाद फिर ये देखते हैं कि वो जो कारक ग्रह है उसमें स्ट्रेंथ कितना है। अगर वो कमजोर हो गया है तो वो अपने भाव को कमजोर कर दिया है। सपोज करें कि अगर लग्नेश है, वो छठे भाव में जाके पीड़ित हो गया है, तो वो अपनी कमजोरी अपनी दशा में दिखाएगा। तो सेकेंडली अपने लोग को यही देखना है कि उसमें बल कितना है। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल जो मेन प्रिंसिपल है कि दशानाथ किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है या दशानाथ के नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट है। जैसे कि अगर कुंडली का कारक ग्रह बली हो गए, किसी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, अगर सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। इसी तरह से अपने लोग दशा का फलित करते हैं।
बहुत अच्छे राखी। राखी, आपको भी पता है कि हम जब दशा की बात करते हैं तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, जैसे आपने बताया, हम ऐसे देखते हैं कि एमटी एडी का संबंध किसी भाव भावेश या कारक से हो तो उससे रिलेटेड अच्छा या बुरा इवेंट होता है। लेकिन हर बार तो ऐसे नहीं होता है, कई बार एमडी एडी का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है फिर भी इवेंट मैनिफेस्ट हो जाता है, तो इसका सीक्रेट क्या है?
एमडी लोडी का संबंध अगर कोई भाव भावेश या कारक से नहीं भी होता है तब भी इवेंट हो जाती है, उसका मेन रिजल्ट नक्षत्र होता है कि वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ, और नक्षत्र लॉर्ड का रिलेशन अगर उस भाव भावेश कारक से होता है तब भी वो इवेंट हो जाती है। ये सबसे मेन कंडीशन आ जाती है। इसके कारण कई बार होता है कि अपने लोग कोई भाव का दशा चल रही है फिर भी वो रिजल्ट नहीं देख पाते हैं। और दूसरा कंडीशन होता है कि अगर एमडी लॉर्ड और एडी लॉर्ड कोई भाव और भावेश से अगर वेल प्लेस्ड हो तब भी वो दशा अच्छी जाती है, उस इवेंट होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है।
जी राखी, एक कॉन्सेप्ट है दशा लगन का, आपको मालूम होगा ये आजकल इसकी बहुत बात की जाती है। अगर हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की बात करें और मैं दशा लगन बनाऊं तो दशा लगन से मेरा कारक अकारक मेरा चार्ट का पूरा डायनामिक ही बदल जाएगा। अगर मैं लगन से बोल रही हूँ कि मेरा थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में है तो दशा लगन से वो कुछ और दिखाएगा। तो आप मुझे एक एग्जांपल से बता सकती हैं कि जब हम दशा लगन को, लगन चार्ट को, मून चार्ट को किसी इवेंट के एनालिसिस के लिए देखते हैं तो इनका कोरिलेशन कैसे देखा जाता है?
सबसे पहले ये समझते हैं कि दशा लगन क्या होती है। दशा लगन होती है कि जब आपकी जो जिसकी दशा चल रही महादशा, वो जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव को लगन बना के अपने लोग फलित करते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुंडली का जो कारक ग्रह है वो दशा लगन में अकारक ग्रह बन के आ जाता है। तो नितिन सर ने अपने लोग को ये बताया है कि डायरेक्टली दशा लगन को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि फलित गड़बड़ आ जाएगा। सबसे पहले अपने लोग लग्न चार्ट देखते हैं, लग्न चार्ट से ये देखते हैं कि दशा क्या इवेंट दिखा रही है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं मून चार्ट से, और मून चार्ट से जब वेरिफिकेशन मिल जाता फिर उसको दशा लगन बनाते हैं, और उसमें भी अगर वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी दिखती है तब ये बोल सकते हैं कि हाँ ये इवेंट हो सकती है। इसलिए दशा लगन को डायरेक्टली तो नहीं इम्पोज करना।
राखी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी मैंने महादशा की बात की आपसे, अब अंतरदशा के बारे में कुछ बताएं। महादशा और अंतरदशा का तालमेल एक इवेंट को वेरीफाई करता है कि ऐसा हो सकता है। आपने इस कोर्स से महादशा और अंतरदशा के रिलेशनशिप के बारे में क्या सीखा है?
एमडी लॉर्ड अपने भाव का रिजल्ट एडी लॉर्ड के सपोर्ट से ही दे सकता है। अगर किसी की महादशा चल रही है, सपोज करें कि गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में गुरु का अंतर चल रहा है, तो गुरु अपने भाव का रिजल्ट उस समय नहीं दे पाता है, वो जहाँ बैठा है उसी का रिजल्ट देता है। और उसके बाद जब एडी लोड आता है तो एडी लोड के सपोर्ट से ही वो अपने भाव का रिजल्ट दे पाता है। उसमें सबसे पहले अपने लोग ये देखते हैं कि एमडी लॉर्ड और एडी लॉर्ड का सहधर्म कैसा है। सहधर्म से मतलब ये होता है कि वो कैसे भाव के स्वामी है, वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी है कि वो त्रिस्तदायी लॉर्ड है कि उच्च भाव के स्वामी है। उसके बाद ये देखते हैं कि दोनों में संबंध बन रहा है कि नहीं, संबंध इस तरह से कि दोनों साथ में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, कैसे उन लोग में संबंध बन रहा है। अगर सहधर्म भी है और संबंध नहीं बन रहा है तो फिर रिजल्ट नहीं आता है। जैसे कि अपने लोग देख लेके अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुला लगन है उसमें शुक्र और शनि की दशा चलते, एक केंद्र का स्वामी एक त्रिकोण का स्वामी है या दोनों ही त्रिकोण के स्वामी है, वो दशा बहुत अच्छी हो जाती है। और यही तुला लगन में जब शुक्र में बृहस्पति की दशा आ जाती है तो एक वहां पर सिक्स लॉर्ड भी हो जाता है, वो एट लॉर्ड हो गया, तो दोनों का अगर संबंध बन जाता है तो वो वहां पर निगेटिव रिजल्ट भी दे देता है, वो त्रिस्तदाय भाव का रिजल्ट।
जी राखी, राखी आपने सहधर्म और संबंध की बात की, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर दशानाथ और अंतरदशानाथ का कोई सहधर्म नहीं है, अगर सहधर्म है भी तो संबंध नहीं है, तो फिर वो कैसे रिजल्ट्स देंगे हमें?
यही तो सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज जो सर ने अपने लोग को सिखाई है कि अगर सहधर्म और संबंध नहीं होता है तो सबसे ज्यादा मेन देखते हैं कि दोनों में म्यूचुअल पोजिशन करता है। कोई भी ग्रह एक दूसरे के साथ में या तो 9 पंचम बैठता है या 3 11 बैठता है या 2 12 बैठता है या साथ में भी बैठे हुए होते हैं, सम सप्तक बैठे हुए होते हैं, उसी हिसाब से वो लोग रिजल्ट देते हैं। कोई ग्रह एक दूसरे से अगर दो बार बैठता है तो उस वो दूसरा भाव कोई भी भाव का रिसोर्स होता है और बारहवा भाव उस भाव के लिए उसका व्यय होता है। अगर दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो रिसोर्सेस आपको इजीली मिलेंगे, और यही अगर क्रू ग्रह बैठा हुआ तो रिसोर्सेस मिलने में प्रॉब्लम होगी उस दशा में। और अगर बारहवें ग्रह भाव में अगर कोई सौम्य ग्रह बैठा हुआ है तो आपका व्यय भी आसानी से हो जाएगा, आपकी इच्छा मन से होगा। और अगर बारहवें ग्रह में कोई क्रू ग्रह बैठा हुआ तो बिना काम के खर्चे हो सकते हैं जिसमें आपकी इच्छा नहीं है। इसी तरह से म्यूचुअल पोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है।
आपने म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे मींस महादशा अंतरदशा एक दूसरे से कैसे बैठे हैं बहुत अच्छे से बताया। इनफैक्ट मेरे लिए ये एक सेवियर मेथड है। कई बार चाइल्ड बर्थ होता है लेकिन एमडी एडी फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड को एक्टिवेट नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी होता है क्योंकि एमडी एडी एक दूसरे से फिफ्थ फाइव नाइन बैठते हैं तो वो चाइल्ड बर्थ को दिखाता है। अगर किसी लेडी के चार्ट में 311 है MDAD तो वो हो सकता है उसकी शादी हो जाए क्योंकि 3 घर से घर छोड़ने को दिखाता है, चेंज को दिखाता है, और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को दिखाता है। ये तो मेरे लिए ये मेथड मेरे लिए हमेशा एक सेवर मेथड की तरह है और बहुत काम आता है। हाँ राखी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएं कि अंतरदशानाथ क्या महादशानाथ के रिजल्ट को सुपरसीड कर सकता है? क्या वो कंप्लीटली अपने रिजल्ट्स दे सकता है? क्या
अंतरदशा नाथ का रिजल्ट आते हैं और एमडी लॉर्ड अगर कभी कभी वीक हो जाता है तो अंतरदशा लॉर्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और एडी लॉर्ड कई बार होता है कि वो अंतरदशा लॉर्ड को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर देता है। अगर कुंडली का कारक ग्रह की दशा चल रही है उसी समय कुंडली में योग कारक ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो वो पीरियड के लिए जो अकारक ग्रह का जो रिजल्ट मिल रहा था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अंतरदशा लॉर्ड का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है।
राखी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, मुझे ये बताइए।
सारे क्वेश्चन ट्रिकी है
पर आप बहुत अच्छे से आंसर भी तो दे रही हैं। मुझे पता है मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से बात कर रही हूं तो मैंने भी क्वेश्चंस बहुत सोच के बनाए हैं आपके लेवल के। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर अंतरदशानाथ और महादशानाथ एक दूसरे से एनिमिटी रखते हैं लेकिन वो लग्नेश के फ्रेंड हैं, जैसे कि लियो लगन में मार्स का महादशा और मरकरी की अंतरदशा, अब ये मार्स मरकरी से तो एनिमिटी रखता है या एक दूसरे से एनिमिटी है इनकी, लेकिन दोनों सन से फ्रेंडली हैं, तो फिर अब हम कैसे देखें इनकी रिजल्ट गिविंग एबिलिटी या इनका रिजल्ट देने का तरीका कैसा होगा?
अगर एमडी लॉर्ड और जो एडी लॉर्ड है वो लग्नेश के फ्रेंड है वो लगन को हार्म नहीं करेंगे, वहाँ वो दोनों एक दूसरे से एनिमिकल है तो उसमें सबसे फर्स्ट यही देखते हैं कि कौन बली है उसमें ज्यादा। अगर सपोज जैसे आपने लियो लगन की बात करी है उसमें मंगल अगर बली है तो उस समय में नेटिव में उसके नेचुरल ट्रेड ज्यादा आ जाते हैं कि उसमें जातक है ना उस समय एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा हो जाता है, एग्रेसिव ज्यादा हो जाता है। और अगर इसी समय में अगर बुध बली हो जाता है तो उसमें कम्युनिकेशन लेवल है वो एजुकेशन की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए अगर एडी लॉर्ड और एमडी लॉर्ड लग्नेश के फ्रेंड है तो कोई लगन को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी।
जी राखी, राखी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही होने वाला है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और प्रैक्टिकल चार्ट एनालिसिस में ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर महादशानाथ और अंतरदशानाथ किसी भाव के लिए एनिमिटी रखते हैं लेकिन वो लग्नेश के मित्र हैं, जैसे सजिटेरियस असेंडेंट में मान लीजिए मंगल और सूर्य जो कि मेरे पंचमेश और नवमेश हैं दूसरे भाव में शनि की राशि में कैप्रिकॉन साइन में जाके बैठते हैं, तो वो अब सेकंड हाउस को अच्छा करेंगे या बुरा, ये कैसे देखेंगे?
जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन में भी आंसर किया था कि अगर वो लग्नेश के फ्रेंड है तो वो लगन को हार्म नहीं करेंगे, या शनि ये जो सूर्य और मंगल है दोनों ही लग्नेश के फ्रेंड है तो उसके नेचुरल कर्तृत्व से लग्नेश को फायदा ही पहुंचेगा। जहां तक की बात है कि वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो दूसरे भाव में अगर केंद्र के स्वामी जाके बैठ रहे हैं तो वो दूसरे भाव की वृद्धि करेंगे वहाँ पर उसमें क्या होता है जब वो नेचुरल मेलेफिक बन के बैठते हैं तो दूसरे भाव के जो जीव होते हैं उसका नुकसान करते हैं। रिसोर्सेस तो उसको मिलेंगे पर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, बोली में एग्रेशन आ सकते हैं, जो नेचुरल ट्रेड्स है उसके उस भाव में आ जाते हैं। और जहाँ तक है वो एनिमिकल साइन में बैठना है, एनिमिकल साइन में बैठने से उसके सूर्य अगर शनि की राशि में बैठा हो तो उसका बल कमजोर हो गया है वहाँ पर, उसके ट्रेड्स नहीं, वो भाव लगने से कोई नुकसान नहीं पहुँचाता।
जी, तो आप ये बोलना चाहती हैं कि हो सकता है कि सेकंड हाउस के जीव को या उसकी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज को कोई नुकसान हो, लेकिन क्योंकि ये दोनों धन योग बना रहे हैं पंचम और नवमेश होके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो इंसान के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन साथ में वो दोनों क्रूअल और सेपरेटिव प्लैनेट हैं, स्पेशली सन, तो वो फैमिली से दूर ले जाना, वाणी में कड़कपन होना, ऐसा ऐसी टेंडेंसी दे सकता।
हाँ, दूसरे भाव को नुकसान पहुंचा।
जी 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 राखी, अब हम नेचुरल ट्रेड की बात कर रहे थे, तो मेरे को बताएं कि अगर वीनस की महादशा और अंतरदशा आई है और उसका नेचुरल ट्रेड है रिलेशनशिप को दिखाना, तो वीनस का अगर रिलेशनशिप सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड से नहीं है, तो क्या वो खुद में इतनी काबिलियत रखता है कि वो शादी दे दे?
ज्योति, इस केस में मैंने जो देखा है अभी तक कि जब तक वो भाव और भाव से नेचुरल ट्रेड का संबंध नहीं, शुक्र का संबंध नहीं बन रहा है, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है। शुक्र जैसे अपने लोग बोलते हैं कि मैरिड लाइफ का है, तो और वो बहुत सारे चीज का भी कारक हो जाता है, जैसे लग्जरी का है, व्हीकल का है, तो अगर वो चौथे भाव में बैठता है और उस समय उसकी दशा चल रही है, तो वो व्हीकल रिलेटेड इवेंट दे देता है। और अगर वो लगन में बैठा हुआ है और उस समय दशा चल रही है, तो नेटिव में शुक्र वाले गुण ज्यादा आ सकते हैं उसके लिए। इसलिए कोई भी अगर दशा चल रही है किसी की, तो उसके नेचुरल ट्रेड तो हावी होते हैं, पर उसके वो मैरिज ही देगा, उसके लिए उसको भाव भाव से रिलेशन बनाना जरूरी है, जहाँ तक मैंने देखा है, और आप भी बता सकते हो उस पर।
जी राखी जी, मैंने भी ये देखा है कि कनेक्शन हो तो वो बात ज्यादा स्ट्रांगली बोली जाती है, बिना कनेक्शन के हो सकता है कि आपका कोई पासिंग बाय अफेयर हो जाए, आपका इंटरेस्ट हो जाए इन चीजों की तरफ, पर मैनिफेस्टेशन के लिए कनेक्शन टू द हाउस ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। राखी की जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं कि प्लैनेट का सहधर्म और संबंध, ये सब हम लॉर्डशिप के बेसिस पे बात करते हैं, पर जब राहु केतु की बात आती है तो उनके पास कोई लॉर्डशिप नहीं है, इसलिए इनकी दशा को एनालाइज करना सबसे मुश्किल है। आप राहु केतु के लिए कुछ बता सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स कि इनकी दशा कैसे जज की जाती है?
राहु केतु के केस में सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि राहु केतु को जनरल में जब अपने लोग चार्ट के प्रॉमिस देखते हैं तो ये बोलते हैं कि राहु केतु 3, 6, 10, 11 में आते हैं, पर जब अपने दशा का प्रिंसिपल लगाते हैं तो राहु केतु में क्या होता है कि वो जिस भाव में बैठते हैं उस भावेश की एनर्जी को यूज करते हैं। तो अगर राहु केतु केंद्र में बैठा हुआ है तो केंद्रपति के जैसे एक्ट करेगा, तो उस समय उसकी दशा अच्छी हो जाएगी। और अगर राहु केतु के साथ में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और वो कुंडली का कारक ग्रह है, तो वो उस कारक ग्रह का एनर्जी को ले लेगा, यूज कर लेगा, तो राहु की दशा वहां पर अच्छी हो जाती है और जो वो कारक ग्रह की दशा है वो पीड़ित हो जाती है। तो राहु केतु के केस में सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं यहाँ पर।
जी राखी जी, मुझे इस पे याद आया कि सर की तो सीरीज है राहु केतु पर, जिसमें राहु का चार्ट एनालिसिस और दशा एनालिसिस के बारे में काफी कुछ बताया है नितिन सर ने। राखी, मुझे ये बताएं कि अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट है या रेट्रो है चार्ट में, तो उसकी दशा में उनकी रिजल्ट गिविंग इंटेंसिटी या एबिलिटी में कोई चेंज आता है?
हाँ बिल्कुल आता है, जैसे कि अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है उसका स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है, तो जिस हिसाब से उसका रिजल्ट देना चाहिए उसमें कमी कहीं ना कहीं आ जाती है। और अगर कोई प्लैनेट वक्री होता है, तो वक्री जैसे कि अपने लोग जानते हैं कि वक्री ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ अनस्टेबिलिटी लाता है, तो वो जब वक्री ग्रह की जब दशा आती है तो कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी, अनसडननेस है, कोई सोचा हुआ काम नहीं हो पाता है, ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है।
जी मुझे आपको भी याद होगा राखी कि सर ने जब हमें बताया था कि महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ अगर दोनों रेट्रो हैं चार्ट में और उनकी महादशा अंतरदशा है, तो उस टाइम पे कुछ भी ऐसा काम मत कीजिए जो लाइफ लॉन्ग के लिए हो, डिसीजन मेकिंग मत कीजिए, क्योंकि वो फिर से करना पड़ता है, याद होगा। राखी, अगर कोई प्लैनेट पुष्कर नवांश में है या वर्गोत्तम है और वो लगन के लिए अकारक है, तो मैं उसकी दशा को कैसे लूं कि वो पुष्कर नवांश में है इसलिए अच्छा होगा या अकारक है और उसको स्ट्रेंथ मिल गई है या तो बुरा होगा?
पुष्कर नवांश में अगर कोई ग्रह जाता है तो उसके नेचुरल ट्रेड्स में वृद्धि होती है, और वो सौम्य नवांश में जाता है तो उसका जो भी रिजल्ट आना वो इजीली आता है। जैसे कि अपने लोग शनि को देखें, तो शनि अगर पुष्कर नवांश में गया है तो वो हार्ड वर्क है, वो विरक्ति के भाव ज़्यादा डेवलप कर देगा। और यही कुंडली का अगर वो कारक ग्रह होके जाता है तो वो तो नेटिव के लिए अच्छा हो जाता है, पर अगर वो अकारक ग्रह होके जाता है तो वो कहीं ना कहीं विरक्ति और हार्डवर्क उसके लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है उसके लिए वहाँ पर। और इसी तरह अगर कोई प्लैनेट वर्गोत्तम है तो वो उस वर्गोत्तम होने से उसके भाव को, उसके लॉर्डशिप को रिजल्ट स्ट्रेंथ मिलता है। तो अगर कुंडली का कारक ग्रह है तो वो उसके लॉर्डशिप स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ मिल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहाँ पर।
ठीक है राखी, अगर एक प्लैनेट का वुंशोपक बल में अच्छा स्कोर है और शतबल में वह वीक है या वाइस वर्सा, तो इसमें दशा के रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा दोनों के बल में अगर हम देखें?
वुंशोपक बल है ना, हम ना 6D चार्ट से देखते हैं, जैसे D1, D2, D3, D9, D10 एंड D30। अगर कोई प्लैनेट अपने फ्रेंडली साइन में, ओन साइन में, मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है तो वहाँ पर उसको मार्क्स मिलते हैं। अगर मार्क्स अच्छे मिलते हैं तो उसे अच्छा माना गया है, और अगर उसको कम मार्क्स मिलते हैं तो उसके उस एरिया में नेटिव सफर करता है। अगर वुंशोपक बल देखते हैं तो हमें ये बताता है कि उस दशा के दौरान उस डी चार्ट में उसका रिजल्ट कैसा होगा। और लेकिन जब शतबल की बात होती है तो वो उस प्लैनेट का ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर कारक ग्रह बली होता है तो दशा में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, वही अकारक ग्रह बली होगा तो निगेटिविटी आती है वहां पर।
राखी आपने बोला कि अगर वो ऑन साइन फ्रेंडली साइन में हो तो उसको मार्क्स मिलते हैं, तो इसमें क्या उच्चता और नीचता लेते हैं वुंशोपक बल में?
नहीं, जब डी चार्ट में देखते हैं तो वहां पर उच्चता निचता को नहीं कंसिडर किया जाता है, मार्क्स खाली मूल त्रिकोण है, ओन साइन में और फ्रेंडली साइन में बैठने से ही मिलता है।
और अगर एनिमी साइन में हो तो अच्छा
हो तो मार्क्स कट जाते हैं।
जी 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 राखी, राखी अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि हमें सर ने चार्ट देखना बताया, उससे बताया कि नेटिव की नेचर कैसी होगी, वो हम ऑब्वियसली चार्ट के प्रॉमिस से देखते हैं, पर जब कोई दशा आती है तो हो सकता है कि कोई नेटिव है जो फन लविंग है वो सीरियस हो गया, कोई वर्कहोलिक है वो लेजर लविंग हो गया, तो क्या दशा इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो चार्ट के बेसिक प्रॉमिस को ओवररूल कर जाती है?
हाँ, ऐसा होते हुए देखा है, पर उसके लिए उसका लग्न और लग्ने से संबंध बनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर लग्न लग्ने से चंद्रमा से उसका संबंध बनेगा तभी उसके बेसिक नेचर में चेंज आता। जैसे कि अपने लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर राहु की दशा चल रही तो राहु की दशा में नेटिव के ट्रेड्स में ऐसा हो जाता है कि उसको फॉरन कल्चर है, वो थोड़ा इल्यूजन में रहना है, मटेरियलिस्टिक थिंग की तरफ ज़्यादा जाता है। और वही उसी उसके बाद जब गुरु की दशा चेंज हो जाती आती है तो उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो उसमें स्थिरता आ जाती है, उस समय वो ज्ञान की तरफ भागता है, सात्विक नेचर हो जाता है, तो वो दशा के हिसाब से उसका रिजल्ट का वेरिएशन देखने को मिलता है।
जी राखी, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि चेंज आएगा प्रोवाइडेड उसका रिलेशनशिप लगन लग्नेश या चंद्रमा से है, अदरवाइज हम वो चेंज उसकी नेचर में नहीं देखेंगे।
हाँ, क्योंकि बेसिक नेचर पे चेंज नहीं होता है कभी भी किसी का।
जी जी राखी, राखी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने दशा के बारे में बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें बताए। आई एम श्योर एस्ट्रोलाइफ सूत्रास के जो लिसनर्स हैं उनको आज आपसे बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे और दशा समझने में हेल्प करेंगे। थैंक यू राखी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू लिसनर्स, आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.astrolifesutras पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहां पर आने वाले कोर्सेज के बारे में भी बताया गया है। हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलाइफ सूत्रास पर जाकर आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।
उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, अगर आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप इस ऑडियो शो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।